मानो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु तो ही है और ऋतुओं के भी फल फूलों से वृंदावन एकदम भर गया। कोयले भी कुहू कुहू करने लगी, मोर भी केका केका करने लगी, माने कबूतर शंख बजा रहे हो कुक कुक करते हैं ना, मानो शंख बजा रहे हैं, भ्रमर सब झंकार करते हुए मानो सहनाई बजा रहे हो। इसी तरह से सब पशु पक्षी सब आनंद में विभोर हो गए, नित्य रहा नहीं गया। गोपियां भी नित्य करने लगी और कृष्ण भी मंडलीबद्ध होकर के नित्य करने लगे। नित्य की युवति जनेन समम, यहां पर किशोरी जननी ने समम, युवती कह रहे हैं किंतु युवती नहीं किशोरियां हैं। समम सखी विरही जनस्य दुरंते, विरही जनस्य दुरंते, दुरंत मैंने दूर करने के लिए, विरही जनों के विरह को दूर करने के लिए एक वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है ये गोपियां कृष्ण के साथ में नित्य करने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए एक वर्ष तक विरह की आग में ये जल रही थी। आज इन विरही जनों के लिए, अपने लिए नहीं काम के लिए नहीं, विरही जनों के इस विरह को दूर करने के लिए विरही जनस्य दुरंते, कैसे नित्य कर रहे हैं, करतल ताल तरल बलयावन, करतल ताल तरल बलयावन, कविता हो तो ऐसी यदि वो क्या सरस पदावन सदा सुनूं सदा, यदि हरिस्मर स्मरण सरसंग मन कला विलास कुतूहलम तदा सुनु जय देव सरस्वती, तत यदि हृदय में कुछ ऐसी सुनने की अभिलाषा सुनो तद कांत पदावली सरस्वती जी का, यदि कृष्ण के रस में यदि डूबना है तो सचमुच में जयदेव जी गोस्वामी के रचित पदों में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का भी जब सरस मन होने को होता था तो रात उनको स्वरूप दामोदर जी को कहते थे जरा गीत गोविंद के दो एक पद तो सुनाइए, और सुन करके एकदम आनंद में भर जाते थे। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वैसे वैसे उसी में से पद, कभी जयदेव, कभी चंडीदास, कभी विद्यापति, कभी श्रीमद् भागवत के रसपंचाध्याय इत्यादि का श्लोक सुना करके महाप्रभु जी के को रखते थे। करतल ताल, ताली बजा करके करतल ताल, और उसी पर पैर का थिरकना, करतल ताल तरल बलयावन, उनके जो हाथों में कंगन वो मानो करताल हो, करताल के रूप में वो बज रहे हैं, डंप भी बज रहे हैं, डंप जरा बड़ा ऐसा होता है एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ से, मृदंग पाखावज होते हैं ना बड़े सुंदर रसाल सब, उसमें वीणा कच्छप इत्यादि बड़े सुंदर उसमें बज रहे हैं, एक एक से राग रागनी वाले हैं गोपियां, कलित करतल ताल तरल बलयावली कलित कल स्वनर बंसे रास रसे सह नित्य परा हरिनाथ युवती प्रशासन से, कृष्ण ने पंचम तान से गान किया, ध्रुव अथवा विशेष करके धमार और और कुछ द्राविड़ और कौन कौन राग होते हैं जिसमें धमार रास में नहीं होता, वो कुछ इसमें दिए हैं कुछ, तो उसमें रस को बढ़ाने वाले ही केवल राग चल रहे हैं, और गोपियों ने ठीक उसी गान को लेकर सप्तम स्वर में गान, कृष्ण और जोर से बोलना चाहा तो उनका गला ऊपर तक नहीं गया, बस इतना ही गया साधु साधु साधु, मैंने उसे नहीं हुआ उनसे, इसलिए गोपियों को साधु साधु कह करके धन्यवाद। कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और एक गोपी सुमति जी ऐसी क्षिप्रता और लघवता के साथ में नृत्य किया है जब कृष्ण ने अपने मुख में अपनी अंगुली दबा ली। वाह साधु साधु साधु, इस तरह से नृत्य इत्यादि चल रहा है। श्लिष्यति कामपि, शिष्यति कामपि, चुंबति कामपि, कामपि रमयति वामाम, पश्यति चारु पराम अपराम अनुगच्छति राधा। किसी के साथ में हाथ मिला रहे हैं, किसी के साथ में उठ बैठ रहे हैं नित्य के साथ, किसी का आलिंगन करते हैं, किसी के हाथों का चुंबन कर लेते हैं, कभी किसी के तरफ में अत्यंत आधे आंखों को खोलकर बड़े प्रेम से स्मित हास्य से उसकी तरफ में केवल देखते ही रह जाते हैं। पराम अपुराम, किसी को तो देखते हैं और किसी के पीछे दौड़ते हैं जब वो नृत्य करती है, तो ये भी वैसे ही ठीक नृत्य करती है जैसे वो हाथ इस प्रकार से करती है और जिस ताल के साथ में वो नृत्य करती है कृष्ण पीछे पीछे वैसे ही नृत्य कर रहे हैं। ये बासंती का ये वर्णन है। थोड़ी देर के बाद में राधा जी ने देखा कि ये जरा बड़ा वंचक है, मेरी वंचना कर रहे हैं, सबके साथ में ही नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण किंतु अकेले, केवल क्षिप्रता और लाघवता से मालूम होता है कि यहां पर हैं, यहां पर हैं। एक समय के, एक सेकंड के एक कोटि भाग जो जितना छोटा है, लौ निमेश से भी बहुत छोटा, उसी में हजारों गोपियों के साथ में पहुंच कर एक एक साथ में पहुंच यहां नृत्य कर रहे हैं। राधा जी ने देखा उस समय में ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य शक्ति वहां पर नहीं काम कर रही, कृष्ण ने उसको बंद रखा है, जिसके वजह से वो लीला करते हैं जोग माया, वो जोग माया को उन्होंने अलग रखा है, या आत्म माया जिसको कहते हैं, ये सबको दूर रखा है। आज इस समय तुम लोग कुछ मत करना, इसमें चुपचाप तुम लोग भी देखो, और वो भी इस लीला को देख करके एकदम भूल सी गई है, इसलिए ऐश्वर्य प्रकाश नहीं है, इसलिए कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि मैं भगवान, और गोपियां भी नहीं समझ रहे कि हम ईश्वरी हैं, जोग माया के भी मूल हम हैं, ये सब भूल रही है। राधा जी को स्वाभाविक रूप से कुछ मान, मान होते ही कुछ रुष्ट हो गई। रुष्ट किस लिए हुई? मान में कुछ हम लोगों को कुछ क्रोध होता है, क्रोध में कुछ ईर्ष्या द्वेष होती है, वहां पर ईर्ष्या द्वेष भक्तों के ही हृदय में नहीं है, तो उनके हृदय में क्या होगा? इसलिए वहां पर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, वो जो कुछ है वो प्रेम और महाभाव का ही विकार है। विकार मैंने भी ये मत समझ लेना जैसे दूध दही विकृत होने पर बिगड़ जाती है, ऐसा नहीं, उसका वैचित्र वैशिष्ट है, वो विकार माने वैशिष्ट। दूध है, दूध में थोड़ा सा बूरा दे दिया मीठा हो गया, उसके साथ तो कुछ केवड़ा मिला दो, उसके साथ थोड़ा सा कर्पूर दे दो, उसमें और कुछ दे दो, रसाला बन जाएगा। ये वैसे ही वैशिष्ट, इसलिए कृष्ण को और प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनको मान कुछ हुआ, मान करके उसको छोड़ दिया, राक्षसस्थली को छोड़ करके पास के कुंज में वो चली गई। चली तो गई किंतु हुआ क्या, वहां जाते ही अफसोस करने लगी, विरह उनको होने लगी, बहुत अफसोस हुआ उनको, होते तो उनके चित्त में ऐसा भाव आया, क्या आया? स्मरति मनो मम कृतः परिहास। चली गई वहां अकेले हैं, कोई नहीं देख रहा, किंतु वहां पर जाकर के बड़ा अफसोस हुआ, मैं कौन छोड़ करके आई, कृष्ण का संग मैंने क्यों छोड़ा, उन्होंने तो छोड़ा नहीं, हम छोड़ करके आए, यदि अभागनी हूं तो मैं अभागनी, मेरे समान और कोई अभागनी नहीं, मैं छोड़ करके आया। अब रहा, इतने में कोई सखी आती है, राधा जी को तड़पते हुए देख करके पूछती, आप तड़पते क्यों है, छोड़ करके तो चली आई, बहुत मनाया उन्होंने मानी नहीं, आप तड़पते क्या है क्यों। तो वही कह रहे हैं, स्मरति मनो मम कृत परिहास। कृष्ण जो राज के समय में हमसे जो परिहास किया था, वो सब अब मेरे मन में आ रहा है, कितना दुलार करते थे, कितना प्यार किया उन्होंने, और कैसे सुंदर सुंदर परिहास किए, आज मेरा मन उसके लिए स्पृहा कर रहा है, मैं स्मरण कर रही हूं। कैसे, राशे हरिमिह विष्ट विलास, राज के समय में जो उनका जो गोपियों के साथ में जो विलास, विलास माने क्या, लीलाएं कथोपकथन इत्यादि, जैसा जैसे कौन सा परिहास, जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग इसको दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये किस चीज का स्मरण कर रही है, कृत परिहासम है ना, जो हास किया, कह रहे हैं कि एक समय की बात है कि राधा जी के मान करने पर बहुत मनाया कृष्ण ने, किंतु ये मानी नहीं, इनका कुछ प्रचंड वेग बढ़ता गया और ललिता जी वहां पर उपस्थित हो गए। धुरते ब्रजेंद्र तने तनुसुष्ट बाम्यम माँ दक्षिणा भव कलंक नीलाघवा राधे श्रृंगिणम हितामिति शिक्षयंतिम देवीं गुणैषु ललिताम। धुरते कृष्ण, कृष्ण धूर्त है, उस पर विश्वास मत करना, मां दक्षिणा भव, उसके प्रति तुम कभी भी दक्षिण भाव मत प्रदर्शन करना, टेढ़े रहना, बिना टेढ़े हुए उसको सीधा नहीं किया जा सकता, तुम्हारे मूल्य का भाव तुम्हारे तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगा, इसलिए सदा उससे तुम कुछ ऐसे ही रहना। कभी कभी उनका इच्छा होती है कि नहीं अब मान जाना चाहिए, किंतु वो पीछे से ऐसे कर रहे हैं, नहीं खबरदार ऐसा नहीं, परिहास कैसा, ऐसे ही उनको मान हुआ है। कृष्ण के बहुत मनाने पर भी वो नहीं मानी, कृष्ण ने मुख टेढ़ा कर दिया, मुख सूख गया, मलिन मुख हो गया, और कुछ अन्य मनस्य होकर के देखा जैसे नहीं मान रहे, अब हम ही जा रहे हैं, ऐसा कह करके वहां से चल दिए, पास के एक कुंज में छिप गए। कोई सखी उनको रूप मंजरी इत्यादि पीछा कर रही है, कहां जाते हैं देखें, तो जब वो कुंज में गए तो खूब कुछ दुखित होकर के वहीं पर कोई पर्वत की शिला थी, उसी पर लेट गए। लेटने पर वो सखी जाकर के श्रीमती राधिका ललिता विशाखा इत्यादि से जाकर के कह दिया, वो कहीं गए नहीं, बड़े दुखी होकर के तुम्हारे विरह में तड़पते थे, आगे नहीं जा सके, इसी में सो गए हैं। उन्होंने कहा कहां, तो वो सबको लेकर के वहां पर आए, कुंज के दरवाजे से वो देख रहे। कृष्ण वहां से किसी प्रकार से, इसमें थोड़ा सा चीज रख, वहां पर कृष्ण जाकर के एक सखी से मिलते हैं और उसे अन्य विनय करते हैं और कहते हैं उससे कि सखी जाकर के राधा जी से कहो, क्षम्यताम अपराधम कदापि तादृशम न करोमि, कदापि तादृशम न करोमि क्षम्यताम, जाकर के कहो जो कृष्ण कह रहे हैं मैं उनके लिए बहुत दुखी हूं, इसलिए भविष्य में मैं ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करूंगा जिससे वो अप्रसन्न हो जाए, अब मुझे वो क्षमा कर दे। देही सुंदरी दर्शनम मम मन मथे न दूं, मैं बड़ा दुखी हूं, इसलिए सखी से कहो जी हमारे ऊपर में प्रसन्न होकर के दर्शन, वो सखी गई और बहुत तरह से निहोरा किया, मनाया, किंतु फिर भी वो नहीं मानी, लौट गई कृष्ण के पास, लौट गई, लौट करके उनसे कहा जैसे वो नहीं मानते। कृष्ण ने कहा जैसा अब हमको मनाना पड़ेगा। इधर में राधा जी का तो दिया जी नहीं मानेंगी, किंतु बड़ी दुखी हो रही हैं और कृष्ण के परिहास इत्यादि को स्मरण, कैसा परिहास, इधर सखी गई उनसे कर या उधर मन ही मन सोच रहे हो कृष्ण कितना हमारा सम्मान करते हैं, कितना आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, मैं थोड़ी सी मान करने पर किसी समय कुंज में वो छिप गए, तो सखी ने जब कहा जो वहां पर कुंज में, तो मैं वहां पर गई, सखियां भी गई, देखा मुख ढक करके रो रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं या सो रहे हैं, तो वहां पर पहुंच करके सखियों ने देखा जी सो रहे हैं, आंख बंद है, मुख कुछ ढका हुआ है, गोपियों ने इशारा किया। इसी समय में हम लोगों की जो परम बैरी शत्रु जो बंसी है, हाथ कुछ ढीला सा भी है, इसी समय ले लेना चाहिए, तब ये हम लोगों के जाल में आएंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, तो इसको ले लेना चाहिए। वो राधा जी कहते हैं ये हाँ ले लेना तो चाहिए, किंतु कौन बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, ये कौन बांधेगा घंटी, परस्पर पूछे अच्छा ये बीड़ा कौन उठाए जो उनके हाथ से बंसी ले आए। राधा जी ने कहा जी भाई ये सहज बात नहीं है, उसका हाथ जो है वो सर्प है, यदि कोई गया और बंसी लेने की चेष्टा की तो वो पकड़ करके डस देगा और छोड़ेगा नहीं, इसलिए कौन जाए। सब लोगों ने मिलकर के कहा कि ये बीड़ा और किसी के द्वारा संभव नहीं है, ये श्रीमती के द्वारा ही संभव। श्रीमती जी ने कहा अच्छा तब तुम सब लोगों की इच्छा है तो मैं जरूर प्रयत्न करूंगी। तो वो धीरे धीरे जैसे बिल्ली चलती है थोड़ा सा ऐसे हो गई और खूब धीरे धीरे दबे पांवों से चलने लगी, कुछ मुस्कुरा भी रही है, कहीं देख न ले। अच्छा कृष्ण को इधर क्या होता है, कृत परिहासम न, कृष्ण ने वो बातें जो परस्पर हो रही थी वो सुन लिया और सुन करके सोचा जब मजाक कुछ करना चाहिए, ये तो बड़ी मान किए ही है, ये तो ऐसे तो मानेंगे, तो बातचीत करने का तो भैया कोई सिलसिला होना चाहिए, कोई मौका होना चाहिए, इनको बंसी चुरा लेने दो और तब फिर कैसे बातचीत की जाती है मैं देखूंगा और तब कैसे क्या बातें होती, तब कभी ललता से बातचीत, कहाँ बंसी रख दिया, कभी उनसे कहूंगी, कभी उनसे कहूंगा, कभी उनसे कहूंगा, सबसे तब बातचीत करने का मुझे मौका मिल जाएगा, बड़े आनंद की बात होगी। बस जान बूझ करके हाथ को और ढीला कर दिया और ये सोच रही वो सो रहे हैं और धीरे 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 जाकर एकदम निकट पहुंची तो देखा जी तो बेसोध सो रहे हैं। जगा हुआ आदमी जग जाता है, सोया हुआ, किंतु जगा हुआ यदि सोया सो आदमी सो जाए तो क्या हो, वो जग नहीं सकता। तो ऐसे ही कृष्ण पायों के आहटे होने पर भी नहीं उठे और उन्होंने झट सर निकाल दिया और निकाल करके झट लंबे लंबे उनके केशों की चोटियां और झट भग गई। भगते हैं कृष्ण ऐसे ऐसे करके हरी हरी कह करके आंख खोल, ये हमारी बंसी कहाँ गई, किधर गई, घूमने लग गए। फिर दौड़े वो बाहर की तरफ में देखा जा रही है गोपियां, ये तुमने ही हमारी बंसी चोरी की, अब तुमने लिया, तुमने लिया, राधा जी से भी कहते किशोरी जी आपने लिया, तो ये क्या बिना पैसे वाली बांस की, हरे बांस की, ये मैं लेकर के क्या करूँ, इसका क्या देव, हाँ यदि मिलती तो हम आग में जला देती। कुंदलाता जी राय भाई इसको तंग मत करो, ये बंसी इनको दे दो। कजी एक बंसी, हमारे बगीचे में लाखों बांस है, एक बंसी की बात क्या, लाखों बांस काट करके इनको दे दो भाई, जितने बांस की जरूरत है तुम काट ले जाओ, एक बंसी के लिए इतना। इस तरह से परस्पर परस्पर कृत परिहासम पीछे से उनको पता लगा नहीं ये कृष्ण सब जान करके परिहास किया है। तो इसलिए हरि रिह रासे हरिमिह विहित बसिया स्मरति ममो मने कृत परिहास। राधा जी सब रहन दिया। कृष्ण जब कोई दूत भेजते हैं दूत मानती नहीं किंतु भीतर ही में मिलने की इच्छा होती है। कृष्ण ने सोचा जी ऐसे काम नहीं बनेगा, दूत भेजने से दूती भेजने से काम नहीं बनेगा। तब उन्होंने क्या किया, स्वयं बन गए श्यामली सखी या मोहिनी सखी, बड़े सुंदर बन करके और पहुंचे। हाथों में वो डलिया जिसमें कि फूल के गजरे होते हैं और मधुर शब्द से उच्चारण कर रहे हैं, मैं किसी की सेवा कर देने पर उसका श्लोक ग्लानी थकावट सब कुछ दूर हो जाए, आज मेरे छूते ही वो प्रसंग हो जाए। सखियों ने राधा जी के समीप लाया, देखा ये तो बड़ी दूसरी सुंदर गजरे का हार लेकर के उनके पास में राधा जी देख करके सचमुच में पहचाना है, ललिता विशाखा इत्यादि किसी ने नहीं पहचाना। वो जब कृष्ण ही स्वयं कोई अभिनय कर रहे हैं रूप धारण, उनको कौन समझेगा। साधारण रूप में नाटक वालों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं ये कौन है, तो उनको कौन पहचानेगा। इसलिए कोई भी नहीं पहचान सकता, जोग माया ये समाधान कर रही है। तो राधा जी को उन्होंने प्रसन्न किया, फूल की माला थी दी, उसमें कुछ गंध आई। तो ये गंध कहाँ से आया, ये गंध कहाँ का है, ये तो कृष्ण संबंधी कहीं का गंध है। फिर बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कौन, श्यामला जी कह रही, देखो जगत में यदि कोई सबसे उपकारी महा उदार महा गुणवान कोई जगत में है तो कृष्ण से बढ़कर के कन्हैया से बढ़कर के नहीं है। इनके समान उदार इनके समान गुणी लोगों का आदर करने वाला कृतज्ञ जितने प्रकार के गुण हैं 64 कलाओं में भरपूर हैं, ऐसे कृष्ण के समान जगत में वृंदावन की तो बात क्या, विश्व ब्रह्मांड में गोलोक वृंदावन में कोई नहीं। और इधर आप में इतना गुण है, इतनी सुंदरी है और इतनी आप गुणी हैं, सो उनके प्रति यदि कोई अपराध हो तो आपको नहीं लेना चाहिए। कृष्ण की ऐसी प्रशंसा की और राधा जी की ऐसी प्रशंसा की और कृष्ण को निरापराध साबित किया उस मोहिनी ने, बस राधा जी बड़ी प्रसन्न। प्रसन्न होने पर कृष्ण कहते हैं, अभी प्रसन्न नहीं, अभी प्रसन्न करने के लिए भी और क्या किया है? अंत में स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम हे ही पद पल्लव, उसमें अंतिम अस्त्र यही उनके हाथ में, आप प्रसन्न हुई है मम शिरसि मंडनम स्मर गरल खंडनम, हमारे अंदर में जो आग विरह की जो जल रही है केवल आपके चरणों के स्पर्श से ही वो ठंडा हो सकता है, इसलिए कृपा करके हमारे चरणों पर हमारे सिर पर आपके चरणों का मंडन कीजिए, मैंने श्रृंगार के रूप में रखिए और आप प्रसन्न हो। राधा जी प्रसन्न और प्रसन्न होकर के कहती हैं क्या, कि हमारे चरणों के देखते हैं परीक्षा करने लगी, अच्छा ठीक अब हमारी बात मानते हैं कि नहीं, हमारे चरणों के नुपुर टूट गए हैं, इनको फिर से गुद करके हमारे चरणों में पहना लीजिए। उन्होंने जो जो आदेश किए हमारी चुटी बिखर गई है, इसको जो जो आदेश दिया सबका उन्होंने पालन किया। पालन करने के बाद में देखा जी आप ठीक हमारा आदेश पालन कर रहे हैं, अब किसी गोपी के पास में हमारे इच्छा की विपरीत नहीं है। तो प्रसन्न बोली अच्छा आप चलिए पधारिए रास में। उस समय में जो वहां पर कौन चंद्र सरोवर पर जो रास हुआ, ये बासंती रस का रास का वर्णन गीत गोविंद में हमारे गीत गोविंद का है। यद्यपि हम लोग श्रवण और कीर्तन के अधिकारी नहीं हैं तो भी एक प्रसंग आ जाए इसलिए हमने संक्षेप में इसका वर्णन किया। वहाँ जो रास हुआ हुआ उसमें जो सम्मिलित उनकी कोई क्या भावनाएं हैं और महाप्रभु इसका स्वादन करते करते उनकी कैसी स्थिति हो जाती थी, वो एक अद्भुत चीज़ है। स्वरूप दामोदराय रमन जी इसका वर्णन करते हुए हम लोग साधारण एक अनर्थग्रस्त जीव वर्णन करने पर कितने सुंदर रूप में आप लोग सब सुनते हैं। और जहाँ पर राय रामानंद स्वरूप दामोदर वर्णन कर रहे हों और स्वयं राधा भाव युक्त कृष्ण ही जहाँ पर श्रोता हूँ महाप्रभु के रूप में, उसमें कितना आनंद हो रहा है। इसलिए ये बासंती रास है, हम लोग मन ही मन इसका स्मरण करेंगे और हृदय में यदि लोग उत्पन्न हो हम भी उस राष्ट्र में की सेवा कर सके तो हम लोगों का जीवन धन्य। अभी ए आप दर्शन में कितनी देरी है, एक कीर्तन करो तो। कौन है, कोई नहीं, वो सबसे पीछे बैठे थे, जल्दी आओ। आज बासंती रास का कोई कीर्तन होगा तुम लोग बिना आते कर।
Thank you. फागुन महीना बड़े भाग से आवे, गोपी ने 11 मास तपस्या करी, 11 मास तपस्या करी, जब अरे प्रीत भरो ये फागुन आयो, और बेनन सो कोई अरे बोलत नाए, नैनन सेनन में बतराओ, अब सर पाए न चूको कोई, अरे ताए रुचे सोई कंठ लगाओ, और ऐसो उपाय अरे करो सरनी, अरे ब्रज सो फागुन मास न जावे। बोलो वृंदावन जय।